بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، देखो कीना की बात चल रही है। गुज़िश्ता हसद का बात चल रही थी, हसद की बात थी, आज कीना। जिसे बताया था कल, शुरू हुआ था कि एक होता है हसद और एक होता है हिक्द। हिक्द का दूसरा माना है कीना, और कीना किसी की तरफ से हमें तकलीफ पहुंच गई, उस तकलीफ पहुंचने के बाद हमारे दिल में उसका बदला लेने का बहुत जज्बा आया, लेकिन बदला नहीं ले सके। तो अब दिल ही दिल के अंदर जो हसरतें हो रही है, जो दुश्मनी हो रही है, उसी को कीना कहते। और हसद, हसद तो है कि किसी की तारीफ हो रही हो और वो तारीफ मुझे पसंद नहीं है और मैं उसको गिराने की कोशिश करूं, तो ये हसद है। खाली ख्याल आना, उस पर कोई पकड़ नहीं। तो देखो, अब ये जो कीना दिल के अंदर जो बात पैदा हुई है, तो उसको भी कमजोर करना जरूरी है, वरना ये किसी न किसी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल के बाद भी ये कीना निकलता है। इसीलिए देखो, वो खानदानी जो लड़ाइयां होती है ना, वो क्या करते हैं, खामोश तो हो गए हैं लेकिन वो मौका ढूंढते हैं। जिस वक्त मौका आएगा, वो 10 साल पहले का जो कीना है, 10 साल के बाद ले रहे उसका बदला। अब सामने वाला भूल जाता है, इसीलिए वो जमाने जमाने जाहिलियत के अंदर जो लड़ाइयां होती थी, क्या था कि भाई मैं मर जाऊं तो तुम इसको बदला लेना। अब वो दिल में कीना है, सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मौका पाकर उसका बदला ले लेते हैं। तो ये कीना ऐसा होता है कि ये आज तो दब गया, अगर उसको निकाला नहीं तो ये अंदर अंदर रखता है। जब इसके पास ताकत आती है, सामने वाला कमजोर हो जाता है या सामने वाला मोहताज बनकर इसके पास आता है, दुनिया में हालात बदलते रहते हैं, तो फिर ऐसे लोग जो दिनों में कीना रखते हैं, वो बाद में बदला लेते हैं। तो ये बात याद रखे, इसलिए उसको निकालना, उसको कमजोर करना जरूरी है। अल्लाह ताला से दुआ भी करे कि अल्लाह ताला दफा होने की दुआ करे। शैतान की एक हिकायत है, अल्लाह बचाए, हसद बड़ी खराब चीज है। खास तौर पर हमारे अहले इल्म के तबके में ज्यादा पाया जाता है, इल्म वालों में हसद। इसलिए वो शैतान से पूछा था, बोले क्या जाल लेके जा रहा था ना नेट, तो कहा हसद का नेट फुला को देंगे और ये बुग्ज का, बदनजरी का, ये सबको अलग अलग वो नेट बांट रहा था। वही नेट आज वाकईतन बांट रहा है और कोई ना कोई किसी न किसी नेट में फंसा हुआ है। तो अहले इल्म के तबके में ज्यादा पाया जाए, क्योंकि ये इल्म ऐसी चीज है कि उसके अंदर तरफ्फु की शान होती, बुलंदी की शान होती। इस वजह से दूसरे शख्स को इल्म में आगे बढ़ता हुआ और तरक्की करता हुआ देखकर, उसको मकबूलियत देखकर, बाद औकात उसकी तरफ से दिल में हसद पैदा हो जाता है। हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि एक शख्स ने ख्वाब में शैतान को एक यारी बात एक बंजारी की शक्ल में देखा। जी, क्या शैतान को? बंजारा, बंजारा उसको कहते हैं जो अपना सामान तिजारत एक गठरी में बांध कर और अपने कंधे पर लाद कर गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले सामान को बेचता फिरता है, उसको बंजारा कहते। तो शैतान को एक बंजारी की शक्ल में देखा। नजीर अकबर, अकबर आबादी की मशहूर नजम है, जिसमें वो एक कहता है कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाड चलेगा, जब लाड चलेगा बंजारा, बंजारा यान सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो बहरहाल ख्वाब में देखा कि शैतान एक बंजारी की तरह बहुत सारी गठरियां अपने कंधे पर लादे जा रहा है। वो गठरिया भी अजीब व गरीब थी। किसी गठरी में पाखाना भरा हुआ है, किसी गठरी में पेशाब भरा हुआ है, किसी गठरी में पीठ भरा हुआ है। सारी दुनिया की नजासतें उसके पास मौजूद थी और हर गठरी पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है। किसी पर लिखा है हसद, किसी पर लिखा है कीना, किसी पर हुब्बे माल, किसी पर हुब्बे जाह वगैरह। किसी शख्स ने शैतान से पूछा कि तुम ये लेकर कहां जा रहे हो। किसी शख्स ने शैतान से पूछा कि तुम ये लेकर कहां जा रहे हो, तो शैतान ने कहा कि सामान्य तिजारत है, मेरा बिजनेस है, उसको बेचने जा रहा हूं, समझे ना। तो उस शख्स ने कहा कि सब गंदगी है, ये कौन तेरे से खरीदेगा, ये सब गंदगी है, ये कौन तेरे से खरीदेगा। शैतान ने कहा कि मुझे अपने माल की मार्केट मालूम है, मंडी, मंडी कहते हैं मार्केट को, कि मुझे अपने माल की मंडिया मार्केटें मालूम है कि कहाँ कहाँ मेरा माल बिकेगा और किस मंडी में मेरा माल फरोख्त होगा। ये हब्बे माल जो है ना, वो तो ताजिरों के इलाके में ले जाकर, वो मेरी मार्केट है ताजिरों की, वहां हब्बे माल में ले जाऊंगा और बिल्कुल बहुत अच्छे दामों में निकल जाएगा, जाकर फरोख्त करूंगा, वो मुझसे माल खरीद लेंगे। और ये हब्बे जा जो है और हसद जो है, उसकी मंडिया जो है वो ओलमा है, जब ओलमा के पास ले जाऊंगा तो वो उसको हाथों हाथ खरीद लेंगे। अल अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। देखा कौन सी मार्केट में देता है। तो इल्म जो होता है ना, इल्म से क्या होता है, हब्बे जा और हसद पैदा हो जाता है। इसलिए देखो, जरूरत का इल्म सीखेंगे तो ये चीज नहीं होगा, हमेशा जरूरत से जायद जो नवाफिल का इल्म होता है, जब वो सीखते हैं तो ये चीज आ जाती है, क्योंकि वो फराइज है, फराइज के अंदर कुछ भी नहीं होगा। हमेशा जितनी रूहानी बीमारियां है, ये सारी की सारी नवाफिल पर आती है, जो फराइज के दर्जे से आगे, जिसको फर्जे किफाया कहते हैं, और वो जब लोग उसमें लगते हैं तो ये चीज आती है। इल्म से हब्बे जान हसद पैदा हो जाता है। बहरहाल, अगर इल्म के साथ इखलास न हो तो इस इल्म के नतीजे में हब्बे जाह पैदा हो जाती है आमतौर पर। हाँ, उसकी इसलाह हुई हो तो फिर उसके अंदर तो नूरो नला नूर हो जाता है, लेकिन इसलाह न हुई तो उसकी बीमारी ऑटोमेटिक आ ही जाती है। हब्बे जाह पैदा होती है और हब्बे जाह के नतीजे में हसद पैदा होता है। हब्बे जाह किसको कहते हैं, अपने आप को बड़ा समझना। लेकिन पीछे बात गई कि क्या अपना आपको बड़ा समझा, लेकिन अपने एतबार से नहीं, अल्लाह की दी हुई नेमत है और उसकी वजह से मैं, अगर अल्लाह न दे तो मैं कैसे, तो फिर कोई हसद नहीं और कोई हुब्बे जा नहीं, लेकिन मेरे सीखा है, मैं आलिम हूं, मैं आ गई तो फिर हुब्बे जा है, हसद पैदा हो जाता है। क्योंकि जब दूसरों को इल्म के अंदर आगे बढ़ता हुआ देखेगा तो उसके दिल में ख्याल पैदा होगा कि ये मुझसे क्यों आगे बढ़ गया, उसकी शोहरत क्यों ज्यादा हो गई, उसकी तरफ लोगों का रुझू क्यों ज्यादा होने लगा। अगर इल्म के साथ इखलास हो कि वो इल्म अल्लाह ताला के लिए हो, तो फिर हसद और हुब्बे जा पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। बल्कि कोई दूसरा इल्म के अंदर आगे बढ़ जाएगा तो खुशी पैदा होगी। हाँ भाई, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से इखलास अता फरमाए। हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब कांदली रहमतुल्लाह अलैह का इखलास देखो, ये कांदला के बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं इदरीस, जिन्होंने सीरत नबी अलैहि सलाम भी लिखी है, सीरत पर किताब, इनकी तफसीर भी है वहां, इदरीस साहब की मारिफ मारिफुल कुरानी है उनका भी, इनका है या किसी और का है, खैर याद नहीं है, लेकिन या तो सीरत की किताब है। हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। ये मेरे वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हम सबक थे। हाँ, ये उनके हम सबक थे और दोनों को आपस में एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत थी। اس درجے کی محبت تھی کہ حضرت والد صاحب کی ہر کتاب کے دو نسخے رکھا کرتے تھے، یعنی دو ولیوم، اور چونکہ تصنیف اور تالیف کا سلسلہ بھی تھا رائٹنگ کا، اس لیے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کا جو نام رکھتے تھے وہ بھی اپنی کتاب کا وہی نام رکھتے تھے. ایسی محبت تھی کہ یہ جو اپنی کتاب کا نام رکھتے تھے یہ بھی اپنی کتاب کا وہی نام رکھتے. چنانچہ والد صاحب نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اس کا نام معارف القرآن رکھا. انہوں نے بھی قرآن کریم کی تفسیر لکھی اور اس کا نام بھی معارف القرآن رکھ دیا. دیکھا معارف القرآن، وہاں ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے بھی لکھی تفسیر، اس کا نام بھی وہی رکھا. حضرت والد صاحب نے ایک کتاب دعاوی مرزا کے نام سے لکھی، انہوں نے بھی ایک کتاب دعاوی مرزا کے نام سے لکھی. کئی کتابیں ایک ہی نام کی لکھی، عجیب محبت. تو لاہور میں قیام تھا، ایک مرتبہ میں لاہور گیا اور اس سے ملاقات کے لیے پہنچا تو مجھ سے فرمایا کہ مولوی شفیع سے میرا سلام کہیو. یعنی یہ مفتی تقی عثمانی صاحب وہاں پہنچے، ان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا ان سے میرا سلام کہیو. لفظ مولوی سے آگے مولانا کا لفظ کبھی نہیں بولتے تھے، مولوی بولتے تھے، مولوی کو سلام بول. پھر فرمانے لگے کہ مولوی شفیع سے ہمارا 52 ایئرس کا تعلق ہے، اور الحمدللہ اس 52 ایئرس کا تعلق کے دوران کبھی دل میں ایک دوسرے کے خلاف بال بھی نہیں آیا، یعنی ذرا برابر پر کوئی وہم اور شکوک اور کچھ نہیں ہو. پھر فرمانے لگے دیکھو 52 ایئرس دوستی نبھانا یہ کوئی آسان کام ہے، یہ وہی دوستی نبھ سکتی ہے جس میں اخلاص ہی اخلاص ہو، ورنہ رائٹر یہ بھی تھے رائٹر وہ بھی تھے، یہ بھی رائٹنگ میں کچھ ایسا نام رکھتے بولے ان کو پچھاڑو، وہ نام رکھتے ان کو پچھاڑو، بلکہ ایسی محبت تھی جو تم رکھو گے وہی میں نام رکھوں، تو ان کا نام تو ان کا کیا ہوا، کچھ بھی نہیں. تو کتنی بڑی دیکھو یہ اخلاص والی دوستی کبھی نہیں ٹوٹتی، یاد رکھو. آج دو چار سال دوستی ہوتی ہے، پھر پانچویں سال بولے کیا ہو وہ تو چلے گئے، کیا کیوں چلے گئے، کچھ غرض تھی وہ پوری ہو گئی یا غرض پوری نہیں ہوئی تو چلے. آج دوستی کوئی آپ کو دوست نہ ملے جس کی 20 سال سے 15 سال سے برابر دوست ہو، یہ بتا دو ذرا. ہاں مخلص والا برابر رہے گا، باقی دوستیاں بہت کٹ جائے. تو اب کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان کو حالات آتے ہیں تو فوراً بدگمان ہو جاتا، یا نہیں بھی ہوا تو کوئی دوسرا آ کر ہمیں ڈال دیتا، ارے بولے تمہاری اس سے دوستی، وہ ایسا ہے ایسا ہے، اور ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر دوستی توڑ دیتے. فرمایا ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی کچھ نہیں ہو. پھر فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ ایک دوسرے کے خلاف بال بھی کیوں نہیں آیا. پھر پوچھنے لگے کہ کیوں نہیں ہوا بال، یعنی ذرا برابر بھی کچھ بھی نہیں ہوا، میل نہیں آیا. فرمایا کہ بال اس لیے نہیں آیا، میل اس لیے نہیں آیا کہ مولویوں کے درمیان جو تعلقات خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ حسد ہوتی ہے کہ فلاں ہم سے آگے کیوں نکل گیا. اس حسد کی وجہ سے کدورت یعنی میل پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں تعلقات خراب ہوتے ہیں. الحمدللہ میرا مولوی شفیع سے اس قسم کا حسد کبھی ہوا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انشاءاللہ آپ بھی نیت کرو کہ ہمارا اور آپ سے بھی ایسا ہی تعلق رہے گا، حسد تو نہیں ہوگا نا سننے والوں سے. دیکھو اگر اخلاص رہا تو انشاءاللہ یہ تعلق موت تک رہے گا، اور اگر کچھ غرض ہوئی تو پھر کچھ نہ کچھ سننے والے جاتے رہیں گے، دوسرے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ہوتا رہے گا. اخلاص سے سنو. جی اللہ ہمیں بھی ایسے دوست عطا فرمائے، ایسے ساتھی عطا فرمائے. جی پھر فرمائے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے درمیان حسد کیوں نہیں ہوا. پھر فرمایا یہ بتاؤ کہ ہمارے درمیان حسد کیوں نہیں ہوا. میں نے کہا بتا دے آپ ہی بتا دے. فرمایا کہ تم نے کافیہ پڑھا، کافیہ کتاب کا نام ہے. میں نے کہا جی ہاں پڑھا ہے. فرمایا کہ اس میں توابع کا بیان آتا ہے، وہ تم نے پڑھا؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھا. فرمایا کہ اس توابع میں ایک نعت ہوتی ہے، وہ پڑھی؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھی. فرمایا کہ نعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مطبوع کی نعت اور ایک متعلق مطبوع کی نعت. मसलन अगर जैद दिनिल आलिम कहो तो आलिम जैद की नात सिफत, नात मानी सिफत और उसकी सिफत है, और कभी मुतालिक मतबू की नात होती है, जैसे जैदुनिल आलिमु गुलामुहु, उसमें आलिम अगरचे असलन गुलाम की सिफत है, आलिम गुलामुहु। तो ये खैर ये तो उसका मौजू है। तो फरमाया मौसुफ आलिम गुलामुहु सिफत, हालांकि आलिम जैद की सिफत नहीं है बल्कि उसके मुतालिक यानी गुलाम की सिफत है, मगर फिर भी तरकीब में उसको जैद ही की सिफत कहा जाता है। ये सारी तफसील बयान करने के बाद फरमाया कि मौलवी साहब, जब मौलवी शफी का कोई इल्मी कारनामा मेरे सामने आवे, जाहिर बात हसद तो यही होगा कि वो अपना इल्म दिखा तो मैं भी अपना इल्म दिखाऊं। तो फरमाया जब उनका कोई इल्म जो दिखाता मेरे सामने आवे तो मैं यूं समझू कि मैं जैदुनिल आलिमु अखूहू की कबील से हूं, और जो तसनीफ उन्होंने की है वही हकीकत में तो उनकी है, उनकी है, लेकिन उनके वास्ते से मेरी भी है। इस वजह से हमारे दरमियान तवील अरसे की दोस्ती के बावजूद कभी दिल में हसद पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ये जज्बा हम सबको अता फरमाए। यानी मैंने उनको अपना भाई बना दिया, उनकी जो सिफत वो मेरी सिफत, तो इसलिए उन्होंने जो किताब का नाम वो मेरा ही रख देता है। बोला असल तो उनकी है लेकिन नाम इसीलिए उन्हीं का रख दिया, मेरा कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर, ये भी बहुत जय्यद आलिम थे, बड़े आलिम थे, लेकिन कैसा अपने आप को मिटाया और कैसा दोस्त की दोस्ती निभाई है कि उसमें जरा बराबर भी, वरना आज तो किसी के साथ में हम रहते भी है तो उसके पास से अपना उसका सब कुछ सीखने के बाद और उसके मुकाबले में अपना दूसरा खोलते। अगर कोई आलिमों के पास बैठता है तो उनके पास बैठकर या उनके पास पढ़ा पढ़ा कर अपना दूसरा मदरसा खोलता है, चलो हो गया बोले अब दोस्ती खत्म। अरे बाबा मदरसा खोलो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्ती जैसे पहले थी वैसी बाकी रखो। ये तो अच्छा है कि फैलना चाहिए, फैलाओ, लेकिन दोस्ती तोड़ना, मुकाबले पर आना और उसका क्या बोलते हैं वही मुकाबला कहते हैं इंग्लिश में, कंपटीशन कहते हैं, तो वो सब चीज है ना वो गलत है। दोस्ती रखो, काम करो अपना। एक वर्कर किसी कंपनी में काम करता है, वहां से जाकर वही कंपनी खोला, खोलो, लेकिन वो दोस्ती रखो। तो ये है, ताल्लुकात खराब मत करो, इसी से इज्तिमाइयत पैदा होती है, जोड़ पैदा होता है। आज हम हर एक कट गए, हर एक के पास से जाते हैं दोस्ती सीखने के लिए होती है, भाई इनसे सीखो और फिर अपना काम करो। भाई सीखो, सीखना है कि जिंदगी भर हमें किसी के यहाँ सर्विस नहीं करनी है, अपना काम करो, लेकिन ताल्लुकात, उस्ताद को उस्ताद समझो, उसका अदब रखो, चाहे फिर वो उस्ताद मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो उस्ताद होता है, उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। वो जब मिले तो उसका इकराम, उसकी अजमत करो। जैसे मौलाना कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह, एक भंगी से एक मसला पूछा था जानवर के बारे में, कुत्ते के बारे में, तो उन्होंने बताया था जब से वो उनके उस्ताद की तरह अदब करते थे, जब आते थे मिलने के लिए तो फौरन वो उनके इकराम करते थे, बिठाते थे, बात करते थे। लोग कहने लगे ये आप भंगी है, ऐसा काम करने वाला हिंदू है, कुछ नहीं। फरमाया उससे मैंने एक मसला सीखा है, देखा। तो ये है ताल्लुकात, ताल्लुकात रखो तो क्या होगा, इज्तिमाइयत होगी। फिर अगर 10 मदरसे बन गए और 10ों के अंदर आपस का ताल्लुक है तो उम्मत के अंदर दीन जिंदा होगा, एक बात चला सकेंगे। और अगर 10ों टूटे हुए हैं तो फिर हर एक अलग अलग बात चलाएगा, उम्मत कहेंगे हम किसकी सुने, इज्तिमाइयत गई, दीन भी गया, क्या हुआ सिर्फ इल्म रहा। इल्म से कुछ नहीं होता, हमें तो उम्मत को अमल पर डालना है। तो ये इज्तिमाइयत टूट गई। तो कोई भी हो, दुकानें, अगर एक कपड़े की दुकान है, अगर 50 दुकानें हो जाए कोई बात नहीं, वो कोई बुरी चीज नहीं है, वो हर एक रोजी अपनी अपनी रोजी खाएगा, लेकिन यह है कि आपस में एक रहो, ग्राहक के साथ अखलाक से बात करो। तो ताजिर लोग, वो 50 दुकान वाले हर एक ग्राहक को एक इल्म देंगे, एक दीन देंगे, एक सबक देंगे कि भाई हमें ऐसा रहना है, तो देखो इज्तिमायत बाकी रही। और अगर नहीं हुआ, हर एक अपने अपने बोले मुझे उसके मुकाबले में खुलना है, वो कहे मुझे उसके मुकाबले में खुलना है, तो क्या होगा, आपस के दिल फट गए। तो ये दोस्ती पर बात आई थी कि ताल्लुकात होते हैं लेकिन निभते नहीं है, और क्यों नहीं निभते, कि इखलास नहीं था। दोस्ती अल्लाह के लिए करो, इसलिए अल्लाह वालों से पास भी लोग आते हैं तो उसमें भी गरज होती है, उनमें भी इखलास नहीं होता कि भाई हम अल्लाह वालों से इसलिए दोस्ती करते हैं कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात मरता फरमाया कि सालिहीन के पास बैठो, बस इसलिए हम आ रहे हैं और कुछ नहीं। तो कुरान की आयत पर अमल भी हो गया, हदीस पर भी अमल हो गया। लेकिन आज तो कोई भी आएगा उसका कुछ न कुछ काम होगा। तो खैर, बस दुआ करें, और ये भी याद रखे, सुनने वाले पूरी दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ है लोग, लेकिन अपने अपने जो भी दोस्ती रखे, रिश्तेदारों से हो, भाई बहनों से हो, या अपने असातिजा से हो, जो भी हो, अल्लाह के लिए दोस्ती करो और उसको निभाना है। तंगी में भी, आसानी में भी, बीमारी में भी, जिल्लतों में भी, राहतों में भी, हर चीज में उसको निभाना, दोस्ती को निभाई जाती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु थे, कैसी दोस्ती निभाई है, मौत तक दोस्ती निभाई है, हालात में भी निभाई। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर जब मार पड़ी है और ऐसी मार पड़ी, चलो यार इनकी वजह से हमने मार खाई है, चलो छोड़ो दोस्ती। पता है ना हजरत अबू बकर कैसा मारा गया था, लेकिन जब होश में आए तो सबसे पहले पूछ रहे हैं मेरे नबी का क्या हाल है, मेरे दोस्त का क्या हाल है। ये थी दोस्ती, मार खाने के बाद ऐसी मार थी कि जैसे कि अब जिंदा ही नहीं रहेंगे, और होश में आ गए, बेहोश हो गए थे, तो उसके बाद भी पूछ रहे हैं कि जब तक मैं उनको देख न लूं, उनकी खबर न सुन लूं, जब तक खाना नहीं खाऊंगा, है कोई दोस्त ऐसा। अल्लाह, हालांकि इनकी पिटाई उस दोस्ती की वजह से हुई है कि नहीं, कोई और तो वजह थी नहीं, उस दोस्ती की वजह से हुई है। आज अगर किसी की मेरे से दोस्ती हो और मेरी वजह से उसकी पिटाई हो जाए, तो वो तो दोस्ती ही तोड़ देगा, बोले यार ये कौन है। हालात आते हैं, इसलिए सोच समझ कर उन्होंने ऐसा पक्का दोस्त बनाया था, बोले जान दे सकते हैं, दोस्ती नहीं टूट सकती। जब दोस्त के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने अपना माल भी दोस्त पर लगा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा पूरा माल लगाया कि नहीं लगाया, ये दोस्त के हुकूक है, दोस्त को मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, दो सवारियां तैयार रखी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता है कि अभी हिजरत का कोई हुक्म होगा, मैंने पहले से सवारी तैयार कर रखी। इसको कहते हैं दोस्ती, सवारी तैयार कर रखी थी। वो तो और बात है कि अल्लाह के रसूल का अमल तो पूरी दुनिया के लिए नमूना था, तो आपने उनसे खरीदा। तो देखो कैसी कैसी दोस्ती थी। फिर ऐसा भी नहीं है, जब साथ में चल रहे हैं तो उनकी जान आगे है कि मेरे दोस्त को कोई तकलीफ न पहुंचे, अगर कोई दुश्मन आ जाए तो पहले मुझे मारेगा, फिर मेरे नबी के पास जाएगा, फिर मेरे दोस्त के पास जाएगा। ये निभाई है। अल्लाह अकबर। फिर मदीना में पहुंचे तो देखो, और हर जगह पर, यहां तक के पूरे पूरे सिफात उनके अंदर वही आ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले। क्योंकि जो दोस्त जिससे मोहब्बत करेगा, जितना इश्क होगा, फिर वो उसी के रंग में रंगेगा, फिर उसकी बातों में भी वही होगा, फिर उसके लिबास में, उसकी चाल और ढाल में पूरा रंग चढ़ जाएगा, पूरा पूरा रंग चढ़ेगा जी। तो ये बात, तो इल्म के साथ इखलास और खादिमियत का जज्बा हो, लिहाजा इल्म के अंदर इखलास होना चाहिए, यानी अल्लाह ताला के लिए इल्म हासिल करना चाहिए। ये इल्म इसलिए नहीं है कि उसके जरिए दूसरों पर फजीलत जताई जाए, या इल्म से मुराद, याद रखो, वो आलिम नहीं जो भी जो इल्म सीख रहा है, अपनी जरूरत का इल्म और उससे अजायद जो कुछ भी इल्म, उसमें पूरे उलमा नहीं है, लेकिन जिसके पास भी इल्म होता है तो फरमाए ये इल्म इसलिए नहीं है कि उसके जरिए दूसरों पर फजीलत जताई जाए कि मैं बड़ा वो छोटा। हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाया करते थे कि क्या ये इल्म अल्लाह ताला ने दूसरों पर जतलाने के लिए दिया है, बड़ा बड़ा बनने के लिए दिया है? अरे अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नेमत दी है, इस नेमत को सही जगह पर इस्तेमाल करो। इस इल्म का सही मसरफ यह है कि इस इल्म के जरिए दूसरों को नफा पहुंचाओ, इस इल्म के जरिए दूसरों को नफा पहुंचाओ। ये नहीं है कि हर एक बन रहे हैं कोई आलिम बन रहे हैं, कोई आलिमा बन रहे हैं और क्या है फिर दूसरे पर फजीलत बनाते हैं, मेरे पास ये है मेरे पास। अरे इसके लिए नहीं, अमल करो दूसरों को नफा पहुंचाओ और उसके जरिए दूसरों की खिदमत करो, खिदमत करो। कोई इल्म से नफा पहुंचाने के लिए कोई मदरसा खोलना जरूरी नहीं है, अरे घर घर जाकर भी इल्म पहुंचा सकते। आज मेरे एक मिला एक अफ्रीकन बुराना कौम का, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बेचारा सर्विस करता है, मुलाजिमत करता है, रात की ड्यूटी है शाम को 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। अब बताओ कितनी भारी ड्यूटी, और उसके बाद 8 बजे अपनी ड्यूटी से निकलता है और जो अस्करी होते हैं ना गेट पर उनके पास जाता है, और एक गेट पर एक अस्करी दो अस्करी होता है, उनको कलमा सही कराता है, उनको कुरान कुछ न कुछ सूरा सिखाता है। ऐसे वो 8-10 घरों में जाता है और फिर अपना घर पे जाकर आराम करता है। अल्लाह पर अजीब, मुझे आज मेरी मुलाकात, मैं उसको देखता था मस्जिद में, वो कहीं ना कहीं जुमा के दिन जुमा के खुतबे से पहले आधा घंटा पहले वो उसने अपने दूसरे आदमियों को बुलाया हुआ है कि आ जाओ, और वहां पर कुरान की तफसीर उनको समझाता है। तो ये है, इसको कहते हैं फायदा, फायदा पहुंचाने का। भी देखो अगर वो कहेगा मुझे कोई मदरसा खोल कर दे, कोई जगह मिले मैं वहां पढ़ाऊ, हालांकि वो भी आलिम नहीं है लेकिन उसने कुछ पढ़ा है, वो चाहता है कि मैं भी दूसरों को कलमा सही कराऊं। मुझे तो बहुत ही ताज्जुब हुआ, मैंने कहा भाई ये लोग है जो वाकत मुस्तहिक, इनके हमें और हिम्मत देनी चाहिए। तो वो बहुत अजीब काम करा। तो याद रखे, तो हमने फिर वो डिप्सी यहां होती है ना हमारे पाकलैंड के अंदर, तो वो वहीं रहते हैं, तो एक जगह ली किराए पर और उसको कहा कि तू यहां बैठकर दूसरों को भी पढ़ा जो सुबह में, तो वहां औरतों को भी पढ़ाते इसलिए कि किसी औरत का कलमा नहीं आते, तो वहां पर सही कराता है नहीं पढ़ा। तो वो औरतों को और वो वहां मर्दों को सुबह में पढ़ाता है, फिर वो मर्द अपने काम पर चले जाते, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाते 8 बजे के बाद। तो ये कहते हैं कि देखो अपनी खिदमत करनी है तो खिदमत तो बहुत तरीके से हो सकती है, अपने अपने घरों में भी बैठकर जिसके पास जितना इल्म है अड़ोस पड़ोस वालों को बताओ कि भाई आ जाओ। तो बेचारे आज लोगों को कुछ पता नहीं है दीन के बारे में, कुछ पता नहीं, न कुरान सही है, न नमाज सही है, न न वो नबी और सहाबा को जानते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे माशरे में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो दूसरों को नफा पहुंचा, उसके जरिए दूसरों की खिदमत करो, अपने आप पर फखर मत करो, मैंने इल्म पढ़ लिया, मेरे पास ये डिग्री आ गई, ये हो गया, ये फखर मत करो जी। दूसरों की खिदमत करो, तुम खादिम हो, जिसने भी इल्म सीखा है वो खादिम है, कौम का खादिम है, और दूसरी मखलूक मखदूम है, खादिम और वो मखदूम यानी हम उनके यूं समझो नौकर है, और वो हमारे बड़े हैं, हम उनको इल्म सिखाएंगे, क्योंकि घरों में नौकर काम करता है ना, हम मालिक बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं मखदूम है कि वो बड़े और हम छोटे, कि हमें उनके घर तक जाकर इल्म सिखाना। और यही दावत वाला काम था, दावत वाले काम में क्या था, इसीलिए दावत वाला काम बोले इसमें हर एक निकले, आलिम को भी निकलना है, तालिब इल्म को भी निकलना है, डिग्री वालों को भी निकलना है, मालदार को भी निकलना है, क्योंकि हर एक अपनी अपनी खिदमत करे। माल वाला निकलेगा तो गरीबों को देखेगा और वो गरीबों में माल की खिदमत करेगा, इल्म वाला निकलेगा और लोगों की जहालत देखेगा तो वो लोगों को इल्म की खिदमत करेगा। और इसी तरीके से जो जिस लाइन का होगा, जैसे डॉक्टर जाएगा वो निकलेगा लोगों की बीमारियां देखेगा, बोले इनके पास पैसे नहीं है तो वो अपनी डॉक्टरी की लाइन से खिदमत करेगा, तो जब जाएगा तो खिदमत करेगा ना। اس لیے فرمایا ہر طبقے کو جانا ہے، جہاں بھیج دیا وہاں جائیں گے تو ان کی خدمتیں ہوگی. تو یہ خادم بن کے جا رہے ہیں، اور جس بستی میں جائیں گے وہاں بستی والوں کی خدمت کریں گے. ڈاکٹر والا ڈاکٹر سے کرے گا، مال والا اپنا مال لگائے گا، اور علم والا اپنا علم سکھائے گا، اور دعوت دینے والا ان کو دعوت دے گا، اور سب مل کر وہاں دین زندہ ہو. تو پھر علم کے ساتھ یہی خدمت کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے. علم کے ساتھ خدمت کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے. نہیں ہے کہ اس کے ذریعے دوسروں پر اپنی فضیلت جتائی جائے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کہ ہم نے یوں پڑھایا اور ہمارے پاس یہ ڈگری ہمارے پاس، یہ نہیں. خدمت کرو جس کے پاس بھی ہے. یہ تو دینی علم ہے وہ بھی خدمت کرے، جس کے پاس ڈاکٹری کا علم ہے وہ بھی خدمت کرے. لوٹنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ مریض کو دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں تو ہم بھی تو اپنا لگاوے، کچھ نہیں لگا سکتے تو کم سے کم اپنی جان تو لگاوے، اس کو تسلی تو دے سکتے. تو یہ ہے مال والا اپنا مال لگاوے، لینے کے لیے نہیں، ان کی خدمت کے لیے. تو اور جب یہ اخلاص پیدا ہو جائے گا نا، اخلاص، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر دوسرا شخص علم کے اندر تم سے آگے بڑھتا نظر آئے گا، اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچتا نظر آئے گا، تو تم یہی سمجھو گے کہ میرا ہی مقصد حاصل ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ یہ کام کر رہے. لہذا اس پر جوش ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس پر رنجیدہ ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. شہرت جو ہے نا وہ خراب چیز ہے. مشہور ہو جانا، مشہور ہو جانے سے کوئی مغفرت نہیں ہوتی ہے، کام سے نجات ملتی ہے، ذمہ داری پوری ہوتی ہے. یہ شہرت اور حب جاہ اور مقبولیت دین کے اعتبار سے تو یہ خراب چیز ہے کہ لوگ مجھے جانتے ہیں، لوگ مجھے جانتے ہیں، یہ خراب چیز ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی راحت کے اعتبار سے بھی بڑی خراب چیز ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، آدمی کسی کام کا نہیں رہتا. جب شہرت ہو جاتی ہے، آدمی ایسی فضول چیز کو حاصل کرنے کی طرف کیوں توجہ کرے، اور اس کی وجہ سے دوسروں سے کیوں حسد کرے. ارے بھائی، اگر لوگ تمہارے مقابلے میں دوسروں کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں، لوگ تمہارے مقابلے میں، یعنی مثال کے طور میرے پاس نہیں آ رہا، دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، دوسروں کے متوجہ زیادہ ہو رہے ہیں، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا کام آدھے سے زیادہ دوسرا انجام دے رہا ہے. اچھا ہے، وہ تو تمہاری مدد کر رہا ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. نہ یہ کہ اسے حسد کرنے بیٹھ جاؤ، ارے اس نے میرے علاقے میں کیوں آ کر شروع کر دیا، اس نے یہ میرے پاس کیوں شروع کر دیا، میرا دھندا ہی اس نے میرے بازو میں دھندا کھول دیا. ارے نہیں، کاروبار تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، وہ چلے گا. آج ہر چیز میں ہے، ایک ڈاکٹر نے اپنا ڈسپنسری کھولی، اس کے بازو میں جو دوسرا کھولے گا تو اس کو حسد ہوگا کہ یار یہ کیوں کھولا. ایک عالم نے اپنا مدرسہ کھولا، اس کے بازو میں دوسرا کھولے گا، اس کو حسد ہوگا، بھائی یہ کیوں ہوا. ایک بزنس والے نے اپنا تجارت کھولی، اس کے بعد وہی دکان دوسرے نے کھول دی، تو یہ حسد. بھائی حسد مت کرو. اس نے کہا چلو بھائی اچھا ہے، گاہک زیادہ آتے تھے، میں کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، اب اس کے پاس جائیں گے تو کام آسان ہوگا، گاہکوں کو تکلیف نہیں ہوگی میرے پاس کھڑے ہونے سے. یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں. باقی روزی تو کہیں نہیں جاتی. ہم یہ سوچتے کہ اس نے میری روزی لے لی، یہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھو، امت کی خدمت کا جذبہ ہوگا تو انسان کہے گا چلو اچھا ہوا ان لوگوں کو بےچاروں کو میرے پاس کھڑے رہتے، تو ایک ہی دکان ہے اور اس میں لوگ کتنی لائن لگاتے، 10-15 منٹ کے خراب ہوتے، بازو میں دوسری کھول گئے تو فٹافٹ نکل رہے تو ان کے کام ہو جائیں گے. اللہ اکبر، یہ جذبہ ہمارے اندر سے نکل گیا. اللہ ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے. بہرحال اگر دل میں اخلاص رہے تو پھر حسد کی جھٹ کٹ جاتی ہے، اور اس سے حسد سے بچنے کا بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہر عمل میں اخلاص پیدا کرو. حسد سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہر عمل میں اخلاص پیدا کرو. جو جو اخلاص پیدا ہوگا انشاءاللہ یہ حسد زائل ہو جائے گا، نکل جائے گا. جی اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہ بیچ میں دوسری بات آ گئی تھی، اصل میں تو کینا پر ہی بات ہو رہی تھی، حسد کا بیان چل رہا تھا، وہ تو الحمدللہ مکمل ہو گیا. یہ کینا بھی انسان کے دل کی ایک بہت بڑی بیماری ہے. یہ کینا جو ہے نا، یہ بھی انسان کے دل کی ایک بہت بڑی بیماری ہے. یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا कि शबे बरात में, लैलतुल कदर में, बेशुमार इंसानों की मगफिरत फरमाते हैं। शबे बरात 15वीं शाबान को कहते हैं। बेशुमार इंसानों की मगफिरत फरमाते हैं, और कबीले बनु कल्ब की बकरियों के जिस्म पर जितने बाल हैं उन बालों के मकदार के बराबर इंसानों की मगफिरत फरमाते हैं। कबीले बनी कल्ब बहुत बड़ा कबीला था, जो हजार हा अफराद पर मुश्तमिल था। जो कबीले के जो अफराद थे वो हजारों थे, और हर शख्स के पास बकरियों के रेवड़ थे, वो भी बड़े बड़े रेवड़ थे। तो अब कितने लाखों करोड़ों बकरियां होगी, अब एक बकरी में कितने बाल होते हैं। तो फरमाया कबीले बनी कल्ब के मिकदार, उनके बालों, कबीले उनके बकरियों के बालों की मिकदार के बराबर मकसद, यानी बहुत ज्यादा बताना मकसूद हो। तो आपने फरमाया इस कबीले की बकरियों के जिस्म पर जितने बाल है इतने इंसानों की मगफिरत अल्लाह ताला उस रात में फरमाते हैं, लेकिन दो आदमियों की मगफिरत नहीं फरमाते, दो आदमियों की मगफिरत नहीं फरमाते। एक रहमत का दरवाजा उस रात में खुला हुआ है, रहमत के परवाने तकसीम हो रहे हैं, लेकिन उस रात में दो आदमियों की मगफिरत नहीं होती। एक वो शख्स जिसकी शलवार या पाजामा या तहबन यानी लुंगी टखनों से नीचे लटका हुआ हो, या कुर्ता हो, जैसे वो अरबी कुर्ता होता है, तो वो भी टखनों से नीचे होगा तो उसकी मगफिरत नहीं, बहुत बड़ी वईद है। और पाजामा हो या लुंगी हो या शलवार हो, जो भी हो, वो टखनों से नीचे नहीं होनी चाहिए, उसकी मगफिरत शबे बरात 15वीं शाबान को भी नहीं होती, अलायाज़ु बिल्ला, क्योंकि ये तकब्बुर की अलामत है। और जो आदमी इस रात में भी तकब्बुर से बाज ना आए, अल्लाह ताला के सामने आजिजी करने और गिड़गिड़ाने के बजाय तकब्बुर का काम करे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि उसको हमारी मगफिरत की जरूरत नहीं, इसलिए हम उसकी मगफिरत नहीं करते। देखा, एक तो ये शख्स, और दूसरा कीना रखना। दूसरा वो शख्स है जिसके दिल में दूसरे मुसलमान की तरफ से कीना हो, बुग्ज हो। मैंने बताया ना कि कीना इतनी खतरनाक बीमारी है, बरसों के बाद भी निकलती है। हाँ, ये अंदर अंदर रहती है। तो और मैंने देखा है कि बाजों ने अपने अंदर कीना रखा कि अभी वो कुछ नहीं जवाब दिया, लेकिन 10 साल के बाद जरा वो ऊपर आए तो उन्होंने उनका अपना कीना निकाला, दिल की दुश्मनी निकाली और तोड़ पैदा कर दिया। तो जी, तो ये फरमाया, इसलिए कीना जो दिल में दुश्मनी रखता है, बुग्ज रखता है, अल्लाह ताला उसकी भी मगफिरत नहीं फरमाते। चाहे वो नमाजें पढ़ रहा हो, देखो, चाहे वो सजदे कर रहा हो, चाहे वो रोजे रख रहा हो, या रात को जाग रहा हो, शबे बरात और शबे कदर में भी उसकी मगफिरत नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना बड़ा, कितनी बड़ी वईद है। इसलिए और वाकईतन वो माफ करना बड़ा भारी पड़ता है। जो दिलों में दुश्मन, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, बोले नहीं, इसका तकलीफ तो मैं कभी ना कभी इसका बदला लूंगा। ये कीना जो निकालना, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। एक मरतबा हसद तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हसद में क्या है, उसने तकलीफ तो नहीं पहुंचाई, वो मेरा अपनी जात से ताल्लुक, मेरे दिल में उसको अच्छा नहीं लगता है, बस। कीना में तो ये है कि उसे तकलीफ पहुंचाई है। हाँ, उसे तकलीफ पहुंचाई है, तो तकलीफ पहुंचाई तो फिर इंसान उसका इंतजार करता है, कब वक्त मिलेगा। इसलिए भी यहां पर इस मुल्कों में भी मैंने देखा है कि भाई मामला हर एक से अच्छा रखो, और अगर तुमने अगर उसके साथ कुछ बिगाड़ दिया ना, तो वो अपना अंदर का गुस्सा बाद में निकालते हैं। तो देखो, वो वही कीना होता है। तो फरमाया वो अच्छा, चाहे वो नमाजी हो, चाहे सजदे कर रहा हो, रोजे रखता हो, रात भर जाकर इबादत भी करता हो, शबे बारात और लैलतुल कदर में भी उसकी मगफिरत नहीं होती, ये कीना और बुग्ज इतनी खराब चीज है। हालांकि ये नहीं आया कि हसद करने वाले की मगफिरत नहीं होगी, गुस्सा करने वाले की मगफिरत नहीं होगी, ये चीज नहीं आई, ये चीज आई कि कीना रखने वाले की मगफिरत। अल्लाह, ये कीना और बुग्ज इतनी खराब कि जिस वक्त अल्लाह ताला की मगफिरत के खजाने लूट रहे हैं, उस वक्त भी शख्स महरूम है जिसके दिल में कीना है, इसलिए इसे डरना चाहिए और उसकी फिक्र करनी चाहिए कि किसी मुसलमान की तरफ से दिल में कीना न हो। मुसलमान का काम यह है, कुफ्र अस्त दर तरीकत मा कीना दाश तन, कुफ्र अस्त दर तरीकते मा कीना दाश तन, आईने मा अस्त सीना चू आईना दाश तन। हमारे तरीके में दूसरे मुसलमान की तरफ से दिल में कीना रखना कुफ्र है। किसमें? तसव्वुफ के अंदर। याद रखो, इस्लाह का जब तरीका चल रहा है तो उसमें किसी मुसलमान की तरफ से कीना रखना कुफ्र है। और हमारा तरीका यह है कि हमारा सीना आईने की तरह साफ और शफाफ हो। आईन मा अस्त सीना चु आईना दाश तन, यानी हमारा दिल का आईना ये बाहर के आईने की तरह साफ और शफाफ हो, उसमें किसी दूसरे मुसलमान की तरफ से कीना न हो। अल्लाह, अजीब चीज है। बस कीना किसे कहते हैं, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे आगे की चीजें, आज इतना ही रहने देते। और अल्लाह ताला से बार 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 मांगे, पुरानी पुरानी कुछ न कुछ दिल में जमी हुई होगी तो वो भी निकाल दो, निकाल दो। निकलता नहीं, फिर बाद में उसके आसार होते हैं, उस पर कोई हर्ज नहीं है। क्यों? कि वो तो तकलीफ होगी, वो फितरी चीज है। लेकिन हकीकत में नियत रखना कि मुझे बदला लेना है, इंतजार करना, तो फरमाया ये चीजें बहुत बुरी। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमारे सीने को कीने से पाक कर दे। मुराकबा कर ले थोड़ी देर।